जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से शाम के समय श्री कृष्ण की वृंदावन की रास लीला के विषय के ऊपर चर्चा चल रही है। आप में से कितने भक्त बलराम जयंती के बाद अब पहली बार आ रहे हैं आज मंदिर में? दूसरे शब्दों में, आप में से कितने भक्तों ने पिछले हुए रास लीला के जो प्रवचन हैं वो नहीं सुने? कृपया हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, तो अनेक हैं। ये वैसे इस श्रृंखला में और एक कथा है। तो हम जहां कल के प्रवचन छोड़े थे, जहां तक रुके थे, वहां से आगे बढ़ा रहे हैं बात। खैर, फिर भी आप सब नहीं आ पाए थे, इसलिए संक्षेप में हम बताना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों में प्रयास ये रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की रास लीला के बारे में जो गलत धारणाएं हैं उनका खंडन हो जाए, जो सही समझ है, जो सही सिद्धांत है रास लीला के बारे में, उसकी स्थापना हो सबके मन में, ताकि हम जान लें कि श्री कृष्ण की रास लीला वास्तव में सर्वोच्च लीला है, आध्यात्मिक जगत की सर्वोच्च लीला है। और वही लीला भगवान श्री कृष्ण यहां इस भौतिक सृष्टि में प्रकट कराते हैं जब वो स्वयं अपने धाम के साथ अवतीर्ण होते हैं। क्योंकि हम इस भौतिक दृष्टि के, भौतिक जगत के दृष्टि से सब कुछ देखते हैं, इसलिए रास लीला को हम गलत समझते हैं। तो हम अनेक कारण बता चुके हैं जो कि हमें समझना आवश्यक है। आज तक हम 8 कारण बता चुके हैं, 8 बातें जिनको ध्यान में रखना चाहिए रास लीला को समझने के लिए। विशेष करके कल 7वें और 8वें बात की चर्चा हुई थी। इसके पहले हम ये भी चर्चा कर चुके थे कि रास लीला समझने के लिए योग्यता चाहिए और वो योग्यता क्या है। दूसरी बात कि हमें ये जानना चाहिए कि रास लीला कृष्ण ने की थी जो कि भगवान है, और भगवान होने का मतलब क्या है, इसके बारे में चर्चा हुई थी। साथ साथ ये भी बताया गया था कि जिस समय रास लीला हुई थी उस समय श्री कृष्ण केवल 8 वर्ष के थे। अगली बात ये बताई गई थी कि श्री कृष्ण की रासलीला उनकी अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति योग माया के अंतर्गत हुई, महामाया के अंतर्गत नहीं। यहां जो भी नृत्य आदि होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, वो महामाया के अंतर्गत होते हैं। इसलिए संसार के कार्यों में और कृष्ण की रासलीला में बहुत अंतर है। अगली बात यह थी कि ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है, इसलिए जो आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा माना जाता है वो इस भौतिक जगत में सबसे निम्न श्रेणी का माना जाता है। इसलिए रास लीला और भगवान के श्री कृष्ण के साथ जो अन्य लीलाएं हैं जो आध्यात्मिक जगत में इतनी सर्वोच्च हैं, यहां पर अज्ञानवश लोग इनको निम्न श्रेणी का समझते हैं, निंदनीय समझते हैं। अगली बात यह है कि जिस तरह आवश्यक है कि हमें जानना है कि श्री कृष्ण कौन है, उसी प्रकार से ये भी जानना आवश्यक है कि श्री कृष्ण के साथ रासलीला करने वाली गोपियां कौन है। ये भी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, ये कोई साधारण मनुष्य जाति के नहीं है। और भगवान जब रासलीला करते हैं तो अपने ही शक्तियों के साथ, जिनको मूर्तिमान एक स्वरूप मिला है गोपियों के रूप में, उनके साथ में ही वो रमण करते हैं, लीला करते हैं। इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि ये ऐसा है कि जैसे एक बच्चा अपने बच्चा अपने परछाई के साथ खेलता है, और इसमें तो कोई दोष बता नहीं सकता है। ठीक उसी तरह से जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं, तो वो किसी और चीज से रमण नहीं कर रहे हैं जो कि उनके बाहर है। भगवान के बाहर कुछ नहीं है, भगवान से स्वतंत्र कुछ नहीं है, ना गोपियां उनसे स्वतंत्र हैं, ना ये भौतिक सृष्टि उनसे स्वतंत्र है। परंतु भगवान इस भौतिक सृष्टि का भोग नहीं करते हैं, भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति का भोग करते हैं, रमण करते हैं। तो इसलिए गोपियों का अस्तित्व क्या है, गोपियां कौन है, ये समझना भी बहुत आवश्यक है। फिर हम ये भी जान गए हैं कि वास्तव में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ भक्ति की या प्रेम किया, क्योंकि वो उनको पति समान समझते थे। तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार यहां इस जगत में इतने सारे संबंध होते हैं, ये सारे संबंध आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब हैं। तो ये सारे संबंध भगवान के धाम में भी विद्यमान रहते हैं, परंतु अपने आदि शुद्ध रूप में। तो मूल सारे संबंध वहीं पाए जाते हैं। तो जैसे यहां पति पत्नी का संबंध होता है, तो वहां भी भगवान के धाम में ऐसे संबंध होते हैं, माधुर्य रस के संबंध। इसलिए गोपियां जब इस प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति भावना रखती हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। और आठवीं बात जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे, वो ये है कि श्री कृष्ण ही वास्तव में सब जीवों के पति हैं, न केवल गोपियों के, हर एक प्राणी के। जितना भी सब कुछ है वो प्रकृति है, और श्री कृष्ण पुरुष हैं। पुरुष और प्रकृति, पुरुष भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है। इसलिए चाहे वो जीव हो, ये भौतिक सृष्टि हो, आध्यात्मिक सृष्टि हो, ये सब भगवान के भोग के लिए ही है। सारे सारे सृष्टि का कारण यही एकमात्र है। तो श्री कृष्ण सबके पति हैं। तो जब श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, तो इसमें भला क्या दोष हो सकता है। आपको याद होगा कि दो दिन पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब श्री कृष्ण ने वंशीवट में खड़े होकर बांसुरी बजाना आरंभ किया, अनेक गोपियां तुरंत उनके पास चली गईं। कई गोपियां हैं जिनको रोका गया, वो नहीं जा पाए। कृपया सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन बंद करिएगा जब मंदिर में आएंगे। ये एक नियम बनाइए कि मंदिर के अंदर आते ही फोन आप कृपया बंद कीजिएगा। अभी भी जिसके पास मोबाइल फोन है, कृपया अपने अपने फोन देख लीजिए ताकि वो बजे नहीं। अभी तो अनेक ऐसी गोपियां थीं जो रोकी गईं और वो नहीं जा पाईं। और परीक्षित महाराज को शुकदेव महाराज ऐसे कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति ऐसे तीव्र विरह की भावना उत्पन्न हुई उन गोपियों के मन में, और वो विरह की भावना एक अग्नि के समान थी, जिस अग्नि के कारण उनके हृदय में जो भी थोड़े बहुत कलमश बचे हुए थे उन सब का नाश हो गया। तो परीक्षित महाराज ने यह सब सुन लिया, और जब श्री कृष्ण गोपियों के बीच में संबंध की बात हो रही थी और अब शुकदेव गोस्वामी आगे चल के रासलीला का वर्णन करने वाले थे, परीक्षित महाराज तो श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, आध्यात्मिक जीवन के शिखर पर स्थित हैं, परंतु उन्होंने देखा कि जिस स्थान में श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी वहां पे शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के अलावा अनेक अन्य ऋषि मुनि आदि उपस्थित थे, और ये सब कृष्ण भक्त नहीं थे, कोई ज्ञानी थे, कोई कर्मी थे, कोई योगी थे, तरह तरह के वैरागी थे, हर एक ऋषि मुनि वहां पर भक्त नहीं थे। तो उनकी समझ, उनकी श्रद्धा ऐसी नहीं थी कि वो तुरंत रासलीला को समझ पाए। तो परीक्षित महाराज उनके बारे में सोच रहे थे कि यदि शुकदेव गोस्वामी अब सीधे गोपियों के बारे में बोलना शुरू करें तो हो सकता है ये अनेक ऋषि मुनि यहां जो उपस्थित हैं, जो कृष्ण भक्त नहीं हैं, साधक हैं भले, तपस्वी हैं, वैरागी हैं, परंतु भक्ति के सूक्ष्म सिद्धांतों को नहीं जानते हैं ये, इसलिए वो इस रासलीला के वर्णन को गलत भी समझ सकते हैं। तो परीक्षित महाराज को मन में ये विचार था, ये चिंता थी, तो अपने लिए नहीं परंतु उन ऋषि मुनियों के लिए और आने वाले अनेक वर्षों में हम सब के लिए उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी ने कहा था कि इन गोपियों ने अपने विरह की भावना से अपने शरीर त्याग दिए। वैसे आचार्यों ने समझाया है कि गोपियों का शरीर त्यागने का मतलब नहीं है कि उनकी मृत्यु हो गई, शरीर त्यागने का मतलब है कि उनके भौतिक शरीर का परिवर्तन शत प्रतिशत हो गया आध्यात्मिक शरीर में। इसकी चर्चा हम कल कर रहे थे कि जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा भौतिक शरीर आध्यात्मिक होते जाता है, ये परिवर्तन धीरे धीरे से होता है, और जब हम पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हमारा शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाएगा, और भले हम यहां पर रहते समय अन्यों को लगे कि ये शरीर भौतिक ही है और भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही प्रतीत होने देते हैं शरीर को, परंतु वास्तव में गुण धर्म से ये आध्यात्मिक है। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि हे ब्राह्मण, हे शुकदेव जी, ये बताइए कि गोपियां नहीं जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान हैं, तो वो तो केवल श्री कृष्ण को अपना पति मान रही थी, तो ऐसे केवल पति के प्रति लगाव रखने से उनके सारे बुरे कर्म कैसे खत्म हो गए? उनको पता नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान है? तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा शुकदेव गोस्वामी को। अब वास्तव में बात यह है कि गोपियों को पता था, क्योंकि हम आने वाले श्लोकों में भी देखेंगे कि वो कहती हैं कृष्ण तत्व को वो जानती हैं, वो कहती हैं कि आप ही सबके हृदय में स्थित हैं, यदि वो नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है तो कैसे बोल सकते हैं? तो वो जानती हैं, परंतु वो श्री कृष्ण से प्रेम इसलिए नहीं करती हैं कि कृष्ण भगवान है, ये अंतर है। कृष्ण भगवान नहीं भी होते फिर भी वो कृष्ण से प्रेम करते, लेकिन कृष्ण भगवान हैं इसलिए वो सर्व आकर्षक हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि हे राजन, मैंने पहले भी सातवें स्कंद में शिशुपाल के बारे में वर्णन किया है और उस समय मैंने बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति यदि ईर्ष्या से भी भगवान कृष्ण का स्मरण करता हो तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि उसकी चेतना भगवान में केंद्रित रहती है। तो शिशुपाल के बारे में क्या हुआ था, क्या संवाद हुआ था दोनों के बीच में? संवाद ये है कि जब राजसूय यज्ञ के समय अग्र पूजा किसकी करनी है, पहला सम्मान किस व्यक्ति का करना है, ये चर्चा आरंभ हो गई और अग्र पूजा के लिए अनेक नाम सामने रखे गए। सहदेव जो कि पांडवों में से एक हैं, उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण को यह श्रेय जाना चाहिए, परंतु शिशुपाल जो कि श्री कृष्ण से बहुत ईर्ष्या करता था उसको यह सहन नहीं हुआ और फिर बड़े ईर्ष्या से, ईर्ष्या भरे वचनों से, कटु वचनों से वो सब के सामने भरी सभा में कृष्ण की निंदा करने लगा। कृष्ण को कई अपशब्द कहे और श्री कृष्ण ने अंततः काफी समय रुककर अपना सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल की गर्दन काट दी, बल्कि शिशुपाल का उद्धार कर दिया और सबके आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर से उसकी आत्मा आके सीधे श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में लीन हो गई। तो ये प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से किया था कि ऐसे कैसे हो सकता है, शिशुपाल तो इतना ईर्ष्यालु व्यक्ति था फिर भी उसे ऐसे मुक्ति मोक्ष की गति कैसे मिल गई, जिस गति को प्राप्त करने के लिए अनेक ऋषि मुनि भी जन्मों तक तपस्या करते हैं। तो फिर नारद जी ने बताया कि देखो भगवान श्री कृष्ण ये कौन है, ये परम सत्य है, तो जो भी अपना ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित करते हैं किसी न किसी तरह से, चाहे वो अनुकूल रीति से हो या प्रतिकूल भाव से हो, क्योंकि वो भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो उनका मन तीव्रता से उसमें लग जाता है और उनका शुद्धिकरण हो जाता है। और जिस प्रकार से मन लगता है श्री कृष्ण में, ऐसे प्रतिकूल भावना से वो इतना तीव्र है कि साधारण भक्ति से भी मन इतने तीव्रता से भगवान में केंद्रित नहीं होता है। नारद मुनि ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि फिर हमें भक्ति छोड़कर भगवान से ईर्ष्या करनी चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं, परंतु वो कहना चाहते हैं कि जब कोई तीव्रता से भगवान के प्रति ईर्ष्या करता है तो वो भावना भी इतनी जोरदार होती है कि व्यक्ति उठते बैठते सोते जागते कृष्ण के बारे में ही सोचता है। हालांकि ये भक्ति नहीं कहलाती क्योंकि ये भाव प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, फिर भी क्योंकि उनका मन भगवान में केंद्रित हुआ है उनका शुद्धिकरण हो जाता है और अंततः भगवान उनका उद्धार करते हैं। ये भगवान की कृपा है। नारद जी बताते हैं कि यदि कोई भय के कारण, द्वेष के कारण, स्नेह के कारण, काम के कारण या साधारण भक्ति के कारण भी अपने मन को केंद्रित करता है कृष्ण में तो वो उसका उद्धार हो जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। कंस कृष्ण का मामा था, कृष्ण के प्रति बहुत भय था कंस का। उठते बैठते कंस इतना भयभीत होता था कि हर जगह कृष्ण को ही देखता था। पानी जब पीने जाता था तो अंदर भी पानी की जगह कृष्ण का रूप देखता था। सोते जागते सपने में भी कृष्ण ही आते थे। फिर भी वो भक्त नहीं कहलाता है, परंतु जब भगवान ने श्री कंस का उद्धार किया कंस का वध किया तो कंस को भी मुक्ति मिल गई। शिशुपाल इतने तीव्रता से द्वेष कर रहा था भगवान कृष्ण से, परंतु जब श्री कृष्ण ने वध किया शिशुपाल का तो शिशुपाल को भी मुक्ति की अवस्था प्राप्त हुई। और इसके अलावा जो स्नेह रखते हैं भगवान के प्रति, जैसे पांडव हैं, जो श्री कृष्ण को अपना चचेरा भाई समझते थे, अपना मित्र समझते थे, ऐसा स्नेह था उनके हृदय में कृष्ण के प्रति। भले वो स्नेह ऐश्वर्य भाव से कभी कभी मिल जाता था, फिर भी वो स्नेह तो बहुत तीव्र था। तो उनका भी उद्धार हो गया, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे स्नेह के कारण अपना मन भगवान के ऊपर केंद्रित किया था। उसी प्रकार से यदि जो ईर्ष्या रखते हैं, जो भय करते हैं, जो घृणा करते हैं भगवान से, ऐसे लोगों का उद्धार हो जाता है, ऐसे लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है भगवान के ऊपर अपना मन केंद्रित करने से, तो क्या ये गोपियां जो हैं, जो शुद्ध भावना से, शरणागत भावना से श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? जब ईर्ष्या और द्वेष भाव से कोई कृष्ण के प्रति तीव्रता से विचार करके मुक्त हो जाता है भौतिक सृष्टि से, तो जो शुद्ध भक्ति की भावना से कृष्ण के बारे में सोचेंगे, उनका उद्धार कैसे नहीं हो सकता? वो भी तो अवश्य मुक्ति के पद को प्राप्त कर लेंगे। श्रीपाद मध्वाचार्य स्कंद पुराण के कई श्लोकों को प्रमाण के स्वरूप में रख के कहते हैं कि गोपियां तो पहले से ही मुक्त जीव थी, इस रासलीला को होने के पहले से। ऐसा नहीं है कि कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करके फिर वो भक्त बने या मुक्त हो गए, नहीं। वो कहते हैं पूर्व जन्मों में ही ये सब तपस्या कर चुकी थी, भक्ति कर चुकी थी। हम इस विषय के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि अनेक गोपियां, जो साधना सिद्ध गोपियां हैं विशेष करके, पूर्व जन्मों में ऋषि मुनि थे और बड़ी तीव्रता से उन्होंने भक्ति की थी। उन्होंने दिव्य ज्ञान, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। तो स्कंद पुराण में मध्वाचार्य जी कहते हैं कि ऐसे बताया गया है कि वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के सिवाय दूसरा कोई मुक्ति के लिए रास्ता नहीं है। यदि ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा तो मुक्ति कैसे हो सकता है? तो ज्ञान और भक्ति इन गोपियों ने पूर्व जन्मों में प्राप्त कर ली थी, इसलिए तो उनको गोपियों का शरीर मिला था और श्री कृष्ण का सानिध्य उनको प्राप्त हुआ। इसलिए जब गोपियां ऐसे पति के रूप में स्वीकार कर रही थी श्री कृष्ण को, तो हमें समझना चाहिए कि वो शुद्ध भक्ति के भाव में स्वीकार कर रही थी। क्योंकि वो शुद्ध भक्त थी, इसलिए श्री कृष्ण को ऐसे स्वीकार कर पाई। केवल साधारण कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को ऐसे ही पति मानेगा तो ठीक है, लेकिन वो अपनी मुक्ति का कारण अपने आप नहीं हो जाएगा जब तक कि वो कृष्ण की भक्ति के विधियों का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेगा। और आके चल के ऊंचे स्तर में फिर वो जो भावना है, किसी भी रस में क्यों ना हो, माधुर्य रस हो या सख्य रस हो, वात्सल्य रस हो, किसी में भी वो फिर भगवान के साथ अपना ये संबंध स्थापित कर सकता है। तो श्रीपाद मध्वाचार्य के कहने का तात्पर्य ये है कि गोपियां पहले से ही बहुत बड़ी विद्वान थी, उनको सारा ज्ञान था, पिछले जन्म से तपस्या की थी, भक्ति की थी, इसलिए अब इस जीवन में वो केवल श्री कृष्ण को अपना पति मान रही थी। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी भी राजा परीक्षित को समझाते हैं उदाहरण देके शिशुपाल का, और इसका तात्पर्य ये है कि गोपियां मुक्त जीव हैं और श्री कृष्ण तो हमेशा मुक्त अवस्था में रहते ही हैं, तो यह रासलीला कोई साधारण कार्य लीला कैसे हो सकती है? ये तो मुक्त व्यक्तियों के बीच में एक लीला है, ये संसार के बद्ध जीवों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे स्पष्टीकरण करते हैं शुकदेव जी परीक्षित महाराज के प्रश्न का, ताकि जो वहां उपस्थित ऋषि मुनि हैं वो भी सही दृष्टि से रासलीला को सुनने के लिए तैयार हो जाए। अगली बात यह है कि गोपियां स्वयं कहती हैं कि आप ही सबके आत्मा के आत्मा हैं, आप ही अंतर्यामी हैं, आप हर एक जीव के हृदय में रहते हैं और जीव के साथ में जन्म जन्मांतर से साथ देते हैं। यदि कोई श्री कृष्ण की निंदा करे कि ये इन गोपियों के लेकर एकांत स्थान में बीच रात में चले गए तो ये अच्छा नहीं है, तो उनके लिए गोपियों के ही वचनों से हम ये प्रमाण दे सकते हैं, ये उत्तर दे सकते हैं कि जब श्री कृष्ण सबके हृदय में स्थित हैं, जो कि हमारे लिए सबसे गोपनीय या गुह्य स्थान है, हमारा हृदय, हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है किसको मालूम? अभी आपके पास में जो बैठे हैं उनके हृदय में क्या चल रहा है आपको पता है? नहीं। हो सकता है हृदय में कोई भक्ति अपने घर भक्त अपने घर के बारे में सोच रहा है कि घर में क्या चल रहा होगा, हो सकता है कोई सोच रहा होगा अरे मैं टेलीविजन में बैठा अच्छा हुआ होता, हो सकता है कोई गोलोक वृंदावन के बारे में सोच रहे हैं। तो अलग अलग विचार हमारे हृदय में रह सकती हैं, तो केवल हम ही जानते हैं उन विचारों को, परंतु और एक भी व्यक्ति है जो जानते हैं, वो है कृष्ण। तो हमारा हृदय एक इतना गुह्य स्थान है जो किसी और को उस स्थान में प्रवेश नहीं है सिवाय श्री कृष्ण के। तो गोपियां कह रही हैं जब आप पहले से ही इस गुह्य स्थान में हम सबके साथ में हैं, तो दूसरे वंशीवट में गुह्य स्थान में हम सबको ले गए तो कौन सा बड़ा दोष है? आप पहले से ही हमारे हृदय में है ना स्थित, आप समझ रहे हैं ना इस बात को, क्योंकि श्री कृष्ण अंतर्यामी है तो उनके प्रति कैसा दोष रखा जा सकता है कि आप एकांत स्थान में गए थे? एकांत स्थान में वो तो हमारे हृदय में बैठे हैं जीव के साथ, केवल जीव और कृष्ण साथ में है, तो इसलिए श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है। जब गोपियां वंशीवट आईं, श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर श्री कृष्ण ने उनको वापस भेजना चाहा, उनको उपदेश दिया, पहले दिन पर हम चर्चा कर रहे थे, और फिर गोपियों ने उत्तर दिया कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि हमें जाकर अपने पति की सेवा करनी चाहिए, परंतु हम ये बताना चाहते हैं कि सबके पति तो आप ही हैं, और जब आपकी सेवा हम करते हैं तो इसमें फिर हमारा कोई दोष नहीं है, और वैसे घर जाके भी हम सब कुछ छोड़ के आए हैं आपके लिए, और ऐसे अवस्था में यदि आप हमें वापस जाने के लिए कहें तो हमारे पैर भी तैयार नहीं हैं जाने के लिए, अब हम क्या करें? हम यहां आए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, और देखिए गोपियों ने कितना बड़ा त्याग किया था, किसी महिला के लिए अपने घर को छोड़ के जाना, उनको पता नहीं था कि योग माया द्वारा निर्मित एक दूसरा शरीर उनका घर में है, वो तैयार थी कि हमको घर से बाहर निकाल देंगे। जब इतना त्याग किसी महिला ने किया है, समाज में उनकी निंदा होती कि किस प्रकार की महिला है, और एक महिला के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, कौन चाहेंगी, कौन सी महिला है जो ऐसे चाहेंगी कि समाज में हम बदनाम हो जाएं? तो गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया, सारे समाज में बदनामी प्राप्त करने के लिए भी वो तैयार हो गईं, अपने कुटुंब से बाहर निकल जाने के लिए भी वो तैयार हो गईं। ये इनके त्याग की भावना है, तो इसलिए वो कह रही हैं श्री कृष्ण से कि अब आप हमें वापस जाने के लिए कह रहे हो तो हम तो नहीं जा पाएंगे, हमारे पैर तो हिल ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे गोपियां जब कह रही थी तो श्री कृष्ण ने उनकी बात को सुन ली और उनके साथ में श्री कृष्ण भ्रमण करने लगे। गोपियां आगे भी कहने लगी कि स्वयं लक्ष्मी देवी भी आपके चरण धूलि को प्राप्त करना चाहती हैं, और ये चरण धूलि लक्ष्मी देवी को भी अकेले प्राप्त नहीं होता है, उनको बांट के लेना पड़ता है, क्योंकि तुलसी देवी भी वहां रहती हैं और अनेक भक्त वहां रहते हैं, तो तुलसी देवी को भी आपके चरण धूलि को बांट के स्वीकार करना पड़ता है। और वही लक्ष्मी देवी जो कि नारायण के वक्षस्थल पर निवास करती हैं सदैव, वो आपकी चरण धूलि चाहती है, तो हम भी चाहते हैं ये चरण धूलि। तो जिस प्रकार से भगवान नारायण अपने भक्तों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, आपको भी हम सबको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे कहने पर श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। चलते चलते यमुना के तट पर वो पहुंच गए वंशीवट से, और उस समय गोपियों के मन में ये विचार आ गया कि श्री कृष्ण मेरे साथ में है और मेरी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। ऐसे एक थोड़ा सा घमंड जब हृदय में आ गया तो भगवान ने देखा और भगवान वहां से अदृश्य हो गए, भगवान निकल गए वहां से। तो किसी ने दो दिन पहले एक प्रश्न पूछा था, लिख के उसका उत्तर हम नहीं दे पाए थे, कि गोपियां जब मुक्त जीव हैं, प्रेम भक्ति के स्तर में स्थित हैं, तो उनके हृदय में घमंड कैसे उत्पन्न हो गया। तो ये घमंड भी योग माया द्वारा बनाया गया था, क्योंकि योग माया श्री कृष्ण गोपियों के बीच में लीला की व्यवस्था कर रही थी। कृष्ण चाहते थे कि इन गोपियों का प्रेम उनके प्रति बढ़े। जब विरह होता है तब प्रेम बढ़ता है। जब हमारे किसी प्रिय व्यक्ति से हम थोड़े समय के लिए दूर हो जाते हैं तो उनके प्रति लगाव बढ़ जाता है, यह स्वाभाविक है, और इस दुनिया के संबंधों में भी हम इस बात को देखते हैं। तो श्री कृष्ण गोपियों के शुद्ध भक्ति को बढ़ाना चाहते थे, तो योग माया ने गोपियों के मन में ऐसे एक भावना उत्पन्न कर ली कि श्री कृष्ण मेरे ही साथ हैं, तो हम कितने अच्छे भक्त हैं। श्री कृष्ण वहां से अदृश्य हो गए। तो हम सब के लिए भी एक चेतावनी है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरे भक्तों से अच्छे हैं, कि हमारी भक्ति अन्यों से अच्छी है। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कभी कि हम कीर्तन दूसरों से अच्छा करते हैं, हम प्रसाद बनाने की सेवा दूसरों से अच्छा करते हैं, भगवान की श्रृंगार की सेवा अन्यों से अच्छा करते हैं, हम कथा भी करते हैं अन्यों से अच्छा करते हैं, हम बाहर जाके प्रवचन का या प्रचार करते हैं, अन्य तरह तरह की सेवाएं करते हैं अन्य भक्तों से अच्छा करते हैं। तो ये भावना उत्पन्न होना ये बद्ध जीव के लिए स्वाभाविक है, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण वहां उपस्थित नहीं होंगे जहां की ऐसी भावना है। तो कृष्ण भक्ति केवल उनके लिए है जिनका हृदय नम्र है, और जहां हम अपने आप को अन्यों से श्रेष्ठ समझते हैं तो नम्रता नहीं है वहां, तो श्री कृष्ण वहां प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए हमारे भक्ति के पथ में भी ये बहुत ही आवश्यक है कि हम बहुत नम्र रहें। यदि हमारे श्रवण कीर्तन ठीक ठाक चले, हम भगवान के बारे में कथा सुने, ग्रंथों का अध्ययन करें, हमारा जप ठीक ठाक करें, कीर्तन में शामिल हो जाएं, ये पहली बात। दूसरी बात, यदि हम बहुत नम्र रहें और नम्रता से भक्तों के बीच में हम बर्ताव करें, नम्रता से हमारी सेवा करें, उत्साह से, जिम्मेदारी से, भक्ति भाव से हमारी सेवा करें, तो फिर निश्चित ही आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति तेजी से होगी। परंतु यदि हम नम्र नहीं रहेंगे तो फिर हम ठीक से श्रवण कीर्तन भी नहीं कर पाएंगे, श्रवण कीर्तन में हमारी रुचि नहीं लगेगी, हमारे नाम जप में भी रुचि नहीं लगेगी और सेवा भी सही तरह से नहीं कर पाएंगे। फिर अन्यों में हम दोष देखना शुरू करेंगे और जब ऐसे दोष देखने की प्रवृत्ति हृदय में आ जाती है तो भक्ति नष्ट हो जाती है। इस कलयुग का युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन। निरंतर हमें कृष्ण नाम लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, त्रिनाद अपि सुनिचेन तरोर अपि सहिष्णुन अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। यदि हम सदैव श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को नम्र बनाना चाहिए, हमें सहनशील होना चाहिए, अन्यों को सम्मान देने के लिए तैयार होना चाहिए, अपने आप के लिए सम्मान की कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भक्ति में अनेक वर्ष रहने के बाद भी अपने आप को वरिष्ठ नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार से भावना हम बनाएंगे अपने आप की, तो भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में, भगवान के सुंदर रूप लीला आदि में हमारी रुचि बढ़ जाएगी। यदि हम नम्र नहीं रहेंगे तो भक्ति में प्रगति करना बहुत कठिन हो जाएगा हमारे लिए। तो इस घटना से, इस प्रसंग से योग माया देवी और स्वयं श्री कृष्ण हम सबको सिखाना चाहते हैं कि नम्र होना कृष्ण भक्ति के पथ में कितना आवश्यक है। तो खैर, जब श्री कृष्ण ओझल हो गए वहां से तो गोपियां बड़ी व्याकुल हो गईं। जैसे एक धनी व्यक्ति को अचानक उसके सारे पैसे जब खत्म हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं तो उसे कैसे एक शोक उत्पन्न हो जाता है हृदय में, वैसे ही गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था और श्री कृष्ण को अब खो दिया, तो वे श्री कृष्ण अदृश्य हो गए तो गोपियां इतनी विचलित हो गईं कि इधर उधर कृष्ण को ढूंढने लगीं, वृंदावन के वन में इधर उधर घूम रही थीं और प्रेमावेश में उनको पता नहीं चल रहा था कि वो किनको पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, वो क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं, उनको समझ में नहीं आया। तरह तरह के वृक्ष वहां थे, हर एक वृक्ष के पास जाके गोपियां पूछने लगती, हे जाति पुष्प, जाति पुष्प का नाम है, मल्लिका, मालती इत्यादि अनेक सुंदर ऐसे पुष्प थे वहां, वृक्ष थे, तुलसी, ऐसे हर एक वृक्ष के पास जाके गोपियां पूछने लगी, क्या आपने श्री कृष्ण को देखा है, क्या श्री कृष्ण इस रास्ते से चले गए, यदि आपने देखा है तो हमें बताना। तो इस तरह से गोपियां इधर उधर वृक्षों को पूछ रही थी। यदि कोई साधारण व्यक्ति उनको देखता तो सोचता कि ये तो पागल हो गए हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो वृक्षों को से जाके बात नहीं करता है ना, हम आदमियों से बात करते हैं, पेड़ों से, भंवरों से, जानवरों से तो बात नहीं करते हैं, लेकिन गोपियां बात कर रही थी। फिर वहां हिरण थे तो उनसे बात करने लगे, अरे तुमने देखा है क्या कृष्ण यहां से गए क्या। तो ऐसे भगवान कृष्ण के विरह में उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो और भी बढ़ता गया, बहुत तीव्र हो गया और फिर आपस में मिलके वो श्री कृष्ण की लीलाओं की नकल करने लगे। कोई गोपी श्री कृष्ण की भूमिका निभाने लगी और कोई पूतना बन गई और फिर वो श्री कृष्ण बन के पूतना का वध करने के लिए लीला करने लगी। कोई कृष्ण बन गई तो कोई तृणावर्त बन गया, तृणावर्त का वध कर दिया। ऐसे बकासुर, वत्सासुर, अघासुर, अनेक असुरों का वध श्री कृष्ण ने किया था। तो गोपियां इन सारे लीलाओं की नकल करने लगी। क्योंकि वो पूरी तरह से उनका चित्त कृष्णमय हो गया था। इसलिए गोपियों को, गोपियों का और एक नाम है कृष्णमयी, विशेष करके श्रीमती राधा रानी का नाम है कृष्णमयी, मतलब उनका चित्त कृष्णमय हो गया था, कृष्ण के सिवाय उनके चित्त में और कुछ था नहीं। ये है कृष्ण भावनामृत, ये है कृष्ण भक्ति, जब हमारे मन में कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं होगा। तो गोपियां आपस में ऐसे श्री कृष्ण की लीलाएं करती रहीं, फिर अपने बीच में ग्वाल बाल बने, कोई एक गोपी कहने लगी कि हे कृष्ण, अब देखो हम गाय चरा रहे हैं और वो गाय दूर चली जा रही है, तो गायों को लेकर आना। तो दूसरी गोपी अपनी बांसुरी बजाने शुरू कर देती ताकि गायों को वापस बुलाएं। कभी कभी दूसरी गोपी गायों के नाम पुकारती ताकि गाय लौट के चले आएं। तो ऐसे गोपियां लीला करने लगी कृष्ण के विरह में, और इस प्रकार श्री कृष्ण ने देखा कि अब गोपियां बहुत विरह में हैं, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी फिर से उनके सामने मुझे प्रकट होना चाहिए। गोपियां जब जा रही थी वन में, उन्होंने श्री कृष्ण के पद चिन्हों को भी देखा, और कृष्ण के पद चिन्हों के पास में श्रीमती राधा रानी के पद चिन्ह भी थे, और अंत में देखा कि केवल श्री कृष्ण के हैं, और आके देखा तो श्रीमती राधा रानी भी अकेली बैठी हैं, श्री कृष्ण भी उनको भी छोड़ के चले गए। तो फिर से साथ में मिलकर सब शोक कर रही थी। हम याद रखना चाहिए कि ये जो शोक है गोपियों का, ये संसार के शोक की तरह नहीं है। यहां सब कुछ दुख ही दुख है, भौतिक जगत में यह दुखालय कहलाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भौतिक सृष्टि दुखालयम अशाश्वतम है। तो यहां चाहे हम तथाकथित सुख का अनुभव करें या दुख का अनुभव करें, सब दुख ही दुख है। और कृष्ण के भक्ति के स्तर पे, विशेष करके जब श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हमें होती है, तो ऐसे अवस्था में चाहे वो तथाकथित दुख हो या वो आनंद हो, वो आनंद ही आनंद है। तो इस प्रकार से गोपियों का शोक भी दिव्य आनंद का शिखर था। वो ऐसे इधर उधर घूम रही थी और अचानक श्री कृष्ण उनके बीच में फिर से प्रकट हो गए। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा क्रोधित होकर कि ऐसे क्यों आप चले गए बीच में से, ऐसे करना तो उचित नहीं था। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि वास्तव में मैं इसलिए ओझल हो गया ताकि आप सब की जो भक्ति है वो और तीव्र हो जाए। जब विरह होता है उसके बाद में मिलन का जो आनंद है उसका स्वाद बढ़ जाता है, इसलिए मैं आपके संग से थोड़ी देर के लिए अदृश्य हो गया। अब श्री कृष्ण के वापस लौटने के पहले गोपियों ने एक गीत गाया था, जिस गीत को गोपी गीत कहते हैं। उस गोपी गीत की चर्चा तो इस साल नहीं करेंगे, अगले वर्ष गोपी गीत के अध्याय को की चर्चा हम करेंगे, 31वें अध्याय को। तो गोपियों ने ये गीत गाया कृष्ण के विरह में और वृंदावन में, और जो वृंदावन के भाव को अनुशीलन करना चाहते हैं उनके लिए ये गोपी गीत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें गोपी हम सबको सिखलाती हैं कि हमें कैसे श्री कृष्ण के प्रति भी विरह की भावना रखनी चाहिए मन में। और इस प्रकार जब श्री कृष्ण आ गए वापस, फिर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में रासलीला की। सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण की रासलीला गोपियों के साथ ब्रह्मा जी की एक रात तक चली। पृथ्वीलोक में ऐसे लग रहा था कि ये केवल पृथ्वीलोक की एक रात हो गई है, लेकिन श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की एक रात को इस पृथ्वीलोक की एक रात में दबा दिया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा संभव हो पाया। इसलिए रासलीला बहुत लंबे समय तक चला और एक रात कैसे बीत गई गोपियों को पता ही नहीं चला। और ऐसे 5 अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में रासलीला के बारे में समझाया। कल शाम को और आने वाले 2-3 दिनों में हम और रासलीला तत्व के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों रासलीला को गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए, कैसे नहीं देखना चाहिए और सही दृष्टि क्या है। हरे कृष्णा। तो आपके कोई प्रश्न है? कल ये चर्चा हुई थी कि जैसे किसी भक्त का शरीर भौतिक से आध्यात्मिक हो जाता है भक्ति करके, जैसे लोहे का टुकड़ा अग्नि का स्पर्श करके उसे भी अग्नि के गुण मिल जाते हैं, तो ऐसे कोई लक्षण है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी का शरीर आध्यात्मिक हो गया है? उत्तर है कि लक्षण यह है कि व्यक्ति की भक्ति कितनी तीव्र है, भक्ति के पथ में व्यक्ति कितना आगे बढ़ चुका है, यही लक्षण है। केवल अपनी आंखों से हम पहचान नहीं पाएंगे। यदि हम देखना चाहेंगे कि उनका शरीर कुछ अलग दिखना चाहिए, शरीर में उड़ना चाहिए आकाश में, ऐसे कुछ नहीं होगा, वो साधारण शरीर ही दिखेगा। परंतु जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं वैसे उसका गुण धर्म बदलता है। प्रश्न यह है कि ऐसे गीता में बताया जाता है कि जो व्यक्ति अंत काल में अर्थात मृत्यु के क्षण में भगवान कृष्ण का स्मरण करता है तो वो गोलोक वृंदावन चले जाता है, परंतु जिसने भक्ति नहीं की है और वो यदि कृष्ण का स्मरण मृत्यु के समय करता है तो फिर उसको किस तरह की गति मिलती है? आप में से कोई उत्तर दे सकते हैं इसका? हाँ, सही उत्तर है कि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए पूरा पूरा प्रयास नहीं करेंगे जीवन भर, तब तक अंत काल में श्री कृष्ण का स्मरण हो ही नहीं पाएगा। अजामिल के बारे में, अजामिल ने श्री कृष्ण का स्मरण नहीं किया था, अजामिल ने तो अपने पुत्र को बुलाया था, अपने पुत्र का स्मरण किया था। और वैसे भी अजामिल अपने युव अवस्था में बहुत एक पुण्यवान ब्राह्मण थे, अच्छे रास्ते पे चल रहे थे, वो भक्ति भी कर रहे थे, केवल बीच रास्ते में पथ भ्रष्ट हो गए और जब विकट परिस्थिति आई, यमदूत आए तो अपने पुत्र का स्मरण किया, नारायण का नहीं किया। लेकिन सौभाग्यवश पुत्र का नाम नारायण रखा था तो नारायण का नाम लेने का लाभ मिल गया। तो अजामिल ने भी भगवान का स्मरण नहीं किया उस समय, परंतु भगवान का नाम लेने के कारण विष्णु दूत आए वहां, क्योंकि अजामिल ने निस्सहाय भाव से नारायण का नाम लिया था इसलिए विष्णु दूत वहां पर आए। और इस घटना के बाद जब विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों से बचाया, नरक से बचाया, उसके बाद अजामिल घर छोड़ के गए हरिद्वार। 12 वर्षों तक वहां भक्ति की तीव्रता से, अपने युव अवस्था की भक्ति जहां उन्होंने छोड़ी थी वहीं से शुरू कर ली और अपने जीवन को परिपूर्ण बना लिया। ठीक है। तो अभी थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत कीर्तन प्रश्न है कोई? प्रश्न ये है कि श्री कृष्ण ने गोपियों की वस्त्रों को चोरी क्यों की? ये वस्त्रहरण लीला है। चीर घाट में आप देखेंगे, चीर हरण लीला कहते हैं, ये प्रसिद्ध लीला है भगवान की। क्योंकि इसका कारण भी सुखदेव जी बताते हैं, क्योंकि गोपियों ने कात्यायनी देवी से जाके प्रार्थना की थी कि श्री कृष्ण हमारे पति हो जाए, ये गोपियों की प्रार्थना थी उनके हृदय में। इसलिए श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और ये चीरहरण लीला इसीलिए की गई कि भगवान श्री कृष्ण उनको वचन देना चाहते थे कि ठीक है, मैंने आपकी प्रार्थना सुन ली और मैं स्वीकार कर रहा हूं। और रासलीला भी हुई इसी कारण से, क्योंकि श्री कृष्ण ने चीरहरण लीला के समय ये वचन दिया था कि मैं आपका पति बनूंगा और ऐसे मैं स्वीकार कर रहा हूं, इसलिए ये रासलीला हुई। प्रश्न ये है कि कल बताया गया था कि श्री कृष्ण भी हमारे सही पिता हैं, तो हमारे इस जीवन के पिता हमें भक्ति करने से रोक रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर है कि उनको भी कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए, उनसे भी निवेदन करना चाहिए कि आप भी कृष्ण की भक्ति कीजिए। हम सबके परम पिता श्री कृष्ण है, और इस तरह से बड़े नम्रता से आदर पूर्वक उनको कृष्ण भक्ति के ग्रंथ देने चाहिए, प्रसाद देना चाहिए, भक्तों से मिलाना चाहिए, जिससे कि उनका हृदय भी धीरे धीरे परिवर्तित हो सके। ठीक है, अभी समय हो गया, ठीक है, हरे कृष्ण। अभी कीर्तन करेंगे और उसके बाद प्रसाद होगा। हरे कृष्ण। हाँ, सूचना।